आज के दिन में चंदन से उनको लगाया जाए और उनकी चंदन सेवा होगी और चंदन सरोवर में उनको सुंदर गांव का पर रख करके आज ही के दिन में वो विशाखापट्टनम के पास में नृसिंह जी का मंदिर वो सालों भर तक चंदन से ढके रहते हैं, पैर तक एकदम पूरा मोटा चंदन रगड़ करके और उसका प्रदेश चढ़ाया जाता है। वर्ष में आज ही वो खुलता है, आज उनके श्री चरण और उनके हमको दर्शन होते हैं और फिर आज ही जीत करके शाम तक उसको चंदन फिर एकदम। आज ही के दिन में बद्रीनारायण का द्वार उद्घाटन 6 महीने के बाद में होता है, भादों के महीने के अंत में भाद्र पद उनका पट बंद हो जाता है।
कार्तिक में
वो बंद हो जाता है। कार्तिक का ग्रहण पौ मार फाल्गुन चैत बैसा
बैसाख
महीने तृतीया का दिन होता है। अभी भी चारों तरफ में बर्फ जमा होगा, चल बर्फ को काट करके यहाँ चलते हैं। 6 महीने तक वो ठाकुर जी को ले जाया जाता है आधी बद्री में, जिसको जोशी मठ कहते हैं, वहां पर लाया जाता है और उनको रखा जाता है, उनकी पूजा करते हैं। विजय विग्रहों को सब बड़ी बड़ी विग्रह नहीं आ सकते, विजय विग्रह को लाया जाता है और यहाँ पर सेवा होती है और मंदिर इत्यादि सब उठा उसके साथ ऊपर बर्फ से भर जाता है। तो अभी कुछ साधु सन्यासी उस लोग वहां रह जाते हैं, रह जाते हैं कैसे, वहां पर हम तक स्रोत है, हम तक स्रोत में गर्म पानी के स्रोत है, तो इस स्रोत के ऊपर में अपनी कुटिया लगा ली है, यहां पर बर्फ के बीच में जमता है। वहां पर एक कुंड है, कुंड में चावल टोटली में बांध करके दे दो तो थोड़ी देर के बाद में शुद्ध होकर के चावल बन जाता है। और वहां पर कहीं कहीं में गर्म का श्रोता लेकर आ रहा है और ठंडा श्रोता अलग, दोनों मिल करके स्नान करने के लिए बहुत कुछ बनता है। अच्छा उसमें पेपर उठता है, खा सब कुछ होता है, स्वतंत्र लोग रुचि के किनारे वहां पर ऐसे रहते हैं, या तो 6 महीने के लिए कुछ रख लेंगे खाने पीने का सामान जो अपनी छुट्टी में रह सकते हैं, कहीं बाहर नहीं, बाहर में तो पत्थर को एकदम दब जाएंगे। और कोई तो ऐसे होते हैं जो कोई गोली वोली बना करके रख लेते हैं, बीच में एक ले लेंगे, एक एक महीना दो दो महीना उनको भूख प्यास कुछ नहीं मिलेगी। पहले तो ऐसे ऋषि लोग रहते थे, एक बार ले लिया तो उनका जीवन भर उनको भूख प्यास लगती नहीं थी। जैसे सीता जी ने वो प्रवेश ले लिया अनुसुईया देवी से और वो जब तक वनवास में रही उनको भूख प्यास इत्यादि नहीं, राम की है कुछ न खाना पीना न कुछ, स्नान करने के लिए जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे सब लोग जानते थे। जड़ी बूटियां ये सब तो वैसे लोगों वहां पर ले सके, वहां पर ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि लोग हैं। कहते हैं कि एक बार कोई आदमी गया शाम के समय में भटक गया तो वो रास्ते से कहीं दूसरी तरफ नहीं चला गया, तो चला गया तो रास्ता में मिल रहा, तो रास्ते में देखा कि सब कहाँ जाऊं, रात हो गई, घना घोर जंगली जानवर और ये सब बड़ी भयानक स्थिति हो गई। कितने में किसी साधु को वहां देखा, उनके चरणों में गिर गया कि महात्मा जी का रास्ता जाते पत्थर उठाया और उसमें उनको लेकर के चला गया। चारों पत्थर इतना सुंदर सीनरी है, उसमें साधु जी की कुटिया है और उसमें प्रकाश भी है, निर्मल सोते बह रहे हैं, फूल फल और ये सब बने हुए हैं। उनको खिलाया पिलाया और उसके बाद में खिला पिला करके लेकर के कितना बड़ा 10-15-20-50 माइल का हाथ बना लिया और यहाँ पर उसको पकड़ करके और उसको ठीक वहीं पर रख दिया जहाँ पर उसके साथ ही कहे से इधर में भटक करके मत आना बच्चन को नहीं बड़े बड़े की सुनात्मा और जीवन जो भी प्रकार ये वैष्णव जैसे भक्त लोग नहीं है। अस्थाना वहां पर था तपस्या करता था, कभी कभी वो निकलते हैं
अभी भी तो अच्छे
तो कहते हैं कि अच्छा महाभारत युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ पता नहीं, हम लोग उसी में समाधि करें ऐसे ऐसे तो इस तरह से बद्रीनारायण का पट खुलता है।
कोलाब ग्राम कहाँ पर पड़ता है बद्रीनारायण के आसपास? कोलाब ग्राम,
कोलाब ग्राम,
कोलाब बद्रीनारायण के पास में लिखा गया है भागवत में। अभी भी सूर्य मुंशी नरेश को
हिमालय पास कोलाब ग्राम
बद्रीनाथ के पास में बोले कोलाब ग्राम है जिसमें सूर्य मुंशी नरेश अभी भी तपस्या कर रहे हैं। जब कलि युग समाप्त होगा फिर सूर्य वंशी प्रकट होगा।
तो ऐसे सब सब उस समय में इच्छा मृत्यु रहती है, इस समय में छठी का प्रारंभ होता है, लाखों वर्ष की आयु हो जाती है और किस तथा भी निर्मल हो जाता है उस समय की स्थिति जाती है। अभी ये अजरमर की स्थिति नहीं है, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य किया जाएगा शुभ कर्म तो वो शुभ फल देने वाला है। अब हम लोग विचार करें बद्रीनाथ, हाँ तो बद्रीनाथ में उनका पट खुलता है तो वो जोशीमठ से उनको लेकर के और वहां पर आदि बद्री पहले उसी को कहते थे पीछे से शंकराचार्य जी ये स्थापित है व्यास जी का मूल में व्यास जी ही वहां पर स्थापित किया। पहले नर नारायण का आश्रम नर नारायण तपस्या करते व्यास जी भी कुछ कम नहीं, वो नर नारायण जहाँ आश्रम है जहाँ बद्रीनारायण का मंदिर है उसे एक ही दूर गंगा के दूसरी तरफ गंगा के इस तरफ में बद्रीनारायण और उस तरफ में व्यास गुहा उस तरफ वहीं पर व्यास गिरा वहां पर बद्री का बन है। बद्री मैंने क्या देर कैसी देर दो प्रकार की होती है, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी देर जो इधर में भी होती है वहां पर होता है अभी प्रयाग की तरफ में बड़े बड़े पेड़ होते हैं और लंबी लंबी उसमें मोटी मोटी वो मुक्ता जैसे उसका रंग हरा में वैसे ही कृष्ण का रंग बतलाया गया ऐसे देर होती वो देर नहीं वहां होगी वो तो जम बर्फ से जम करके वो खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े पेड़ यहाँ नहीं मिलेंगे, ये छोटे छोटे बद्री के पेड़ जिसमें छोटी छोटी लाल लाल ये सब निकलती है। ऋषि महर्षि लोग उसी को खा
काम चौन पाड़ी उन सभी जगह
तो सब जाएगा है किंतु जगत दरकार है ना अजरमर वृक्ष है उसको काट दो तो नीचे की जड़ से फिर आ जाए उसके लिए पानी इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है ऐसा हुआ जरा मौजूद है। तो वहां पर इसी में उसके लोग खाएंगे क्या तो बदरी का बन उसी में से खा करके जीवन निर्वाह करके धन करते इसलिए उसका नाम पड़ गया बदरी बन बद्रिकाश्रम इसलिए पड़ा और वहाँ के ठाकुर जी भी बद्री के नारायण गुरु थे, बद्री नारायण। नर नारायण में किंतु उनका नाम पड़ गया कौन सा नारायण, बैकुंठ के नारायण, तो यहाँ पर नाम हो गया उनका बद्री नारायण, इसलिए बद्री विशाल भी उनको कहते हैं, विशाल बद्री का वन और उसमें ये नारायण तपस्या करते हैं। ये तपस्या करते थे और किसी का आदर्श दिखला। तपस्या माने क्या, चित्त को भगवान के चरणों में लगा संसार की सुर बुद्धि में, ये तपस्या ऐसा वो करते। कलयुग में वो सब तपस्या संभव पर नहीं, किंतु कलयुग वाले बड़े सौभाग्यवान हैं, सब सहज रूप में भगवान की आराधना हो जाती है, नाम मात्र से ही, नाम ग्रहण करने से ही वो जो सत्य का की जो आराधना है, इतनी कठोर तपस्या है, अनायासी भगवान का नाम ले लेते ही हो जाता है। किंतु दुर्भागा मनुष्य ऐसा सर्व सहज नाम भी नहीं करता। भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलेगा भगवान का नाम करने से मिल जाएगा। ये ऐसा सर्व सहज नाम नहीं कर सकते। आजकल तपस्या में चित्त को एकाग्र करना बड़ा भारी कठिन है, वायु रेव सदुष्ट, वायु प्रपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर है, बहुत कठोर कठोर तपस्या करते हैं लोग, उसका फल क्या होगा। एक आदमी घर से निकला, निकल करके 25 वर्ष तक कठोर तपस्या की, बहुत साधन किया, निराहार रहा और गांव में 25 वर्ष के बाद में लौटा, तो लोगों ने कहा भाई तपस्या ये जो किया माता पिता घर बार सब छोड़ कर, तो तुमने क्या सीखा। तो मैंने योग सीखा, योग सीखा तो हाँ उसका उसको दिखला सकते हो, कहाँ दिखला सकता हूँ। अच्छा देखो ये गंगा नदी 1 मील चौड़ी है, खूब गहरी है, पखाव लिया और मन पर जप करके उसको खट 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 कर करके पा काली बनाया, और ऐसा तो आज तक जीवन में देखा नहीं। खड़ाम पहन करके गंगा के ऊपर में वो तो मेरा हाँ ठीक तपस्या। वहां एक बूढ़ा था, बूढ़ा ने कहा बेटा तू प्रत्येक पर इतना परिश्रम करके, इतना जोर साधन करके, तुमने दो कौड़ी की चीज तुमने पाई, दो कौड़ी की कैसे, तो इतना तो हम दो कौड़ी देकर तुम घर में पार हो जाते हैं, ये कौन सी गाड़ी है तुमने। वो बुद्धिमान था, ये पार करना कितने के, दो कौड़ी दे दिया पार हो गया, फिर दो कौड़ी दे, इसमें 25 वर्ष तपस्या की क्या जरूरत है, दो कौड़ी की, तो ये दो कौड़ी की चीज सीखी। तो इसी तरह से सत्यजी को मेरी कठोर तपस्या करती है, को एकाग्र करते हैं। त्रेता युग में यज्ञ करते हैं, द्वापर में अर्चन करते हैं, कितना कठोर, वो कलयुग में चुटकी बजाते हैं हरे कृष्ण गाने से ही करते हैं, भागा मनुष्य इसमें विश्वास नहीं रखते। इसलिए हम लोग के गुरु जी ने विचार करके अक्षय तृतीया के दिन आदमी के दिन में कलकत्ते में गौरी और वेदांत समिति वेद वेदों का साथ क्या है, इसको सर्व सहज रूपों में हम जगत में प्रचार करके जगत वासियों के लिए शिक्षा रखेंगे। कैसे तुम्हारा उपकार, तुम मन को एकाग्र नहीं कर सकता है, लाख चेष्टा करो हो नहीं सकता। यज्ञ करेगा तो घी नहीं सुख मिलेगा, गैया का भी कहीं मिलेगा। और जैसे गैया जो करके अपने जमाई में तो तेरी गैया जब भी कट्टी खाती है खाना तो मिलता नहीं सब जगह, तो कट्टी खाएगी तो वो सुख होगा जो उसका भी सुख होगा। लेकिन जितनी ये सब चीजें वातावरण शुद्ध नहीं है, सब कुछ शुद्ध रहने पर शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मण नहीं मिलेंगे यज्ञ कराने में। ये सब त्रेता युग में द्वापर युग में जो अर्चन होता था वो अर्चन भी कल युग में आप संभव कर रहे हैं। उस समय में ठाकुर जी का अर्चन करने से पूजन करने से ठाकुर जी से कहते जी मुझे भूख लगी अभी खिलाया नहीं, बातचीत करते थे। अब कलयुग में बातचीत करते हैं सिद्धि ही नहीं था, भक्ति ऐसी नहीं, इसे ये भी संभव कर रही है। चित्त सब काम मंगली है, घर के रोग के चलते से सबका बुद्धि संकल्प हो गई, कोई सुखी नहीं, इसलिए कलयुग में इसलिए कलयुग में बिना परिश्रम के जब कभी भगवान का भी नाम ले सकता है। और इसका महान फल है जो और सबसे यही वेद उपनिषद वेदांत श्रीमद् भागवत गीता रामायण पुराण सबका ये सार। भगवान का नाम भगवान स्वयं है किंतु उसमें श्रद्धा और प्रेम की जरूरत, बिना प्रेम से वो नाम करने से नहीं होगा। इसलिए जो हरिनाम करने वाले हैं ऐसे जो शुद्ध महात्मा लोग हैं वो लोग यदि शक्ति संचरित करके हमको शुद्ध पथ में लेकर के लगाएंगे पर नाम से वाल्मीकि को नारद मिले इसलिए वाल्मीकि मरा मरा करने से भी जैसे मरा मरा शुद्ध नाम है किंतु तो भी नारद जी की कृपा से मरा मरायु का राम काम होकर के शुद्ध होकर के जगत को तारने वाले बने। एक ही नहीं लाखों लोग ऐसे भक्त लोग हो गए हैं जो लोग नाम काट कह करके बहुत सागर को सर भी पा। इसकी दृढ़ता के लिए पुरुषार्थों की भी आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को जरा भ्रष्ट करती हैं। जब तक जगत में मायावाद रहेगा तब तक भक्ति नहीं होगी, नाम के प्रति आदर भी नहीं होगी। अब तो इस बात में मैं ही भगवान हूं ये भावना आएगी, मैं भगवान हूं मैं ब्रह्म हूं, तब तक शुद्ध नाम नहीं होगा, भगवान में प्रेम भी नहीं होगा। साधारण रूप में अब मथुरा प्री है वृंदावन, भगवान का ऐसा कौन व्यक्ति है जो नाम नहीं करता है? यहां सभी लोग भगवान का नाम करते किंतु सिद्धांत ठीक नहीं है। वो लोग ये भी नहीं जानते हैं कुछ भी नहीं जानते बेचारे, जैसा समझा लो वैसा ही कर ले। वो लोग क्या करते हैं जब मैं ही ब्रह्म हूं मुक्ति के बाद मैं ब्रह्म हो गया भगवान से अभिन्न हूं ऐसा समझ करके भी हरिनाम करते हैं। विशेष करके स्त्रियां तो पागल हो जाते हैं, उनको कोई समझने बुझने की कोई जरूरत नहीं, जैसे तैसे लाल कपड़ा हो या कोई हो बस मन का दीक्षा ले लिया। कितने परम भगवान है कि नहीं है ये सब नहीं जरूरत है, बस हो गया। फिर भगवान की तरफ में घड़ी लपक पड़ती है, जहां देखें कि जहां आदमी अधिक जीतते हैं जहां पर ऐश्वर्य अधिक है बस आदमी घड़ी शुरू करता है, विचार नहीं करता है ये भजन का रास्ता है या नहीं। इसलिए समझ बूझ करके वैष्णव के अनुगत में आता है। कितने ही परम भगवान है इनसे बढ़कर के और कोई सत्य नहीं, ये समझ। और मैं कमी मुक्त होने पर भी भगवान में मिलकर के एक नहीं हो जाऊंगा, जीव और भगवान में ये संबंध है सात और प्रभु का इसी चीज को बतलाने के लिए हमारे प्राचीन काल में लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी और सनत कुमार और रुद्र ये चार आचार्य लोग हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की जो उपासना की थी भक्त और भगवान की भावना से वो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है। उस संप्रदाय में उसी संप्रदाय में ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी आदि होते हुए उसी में मध्वाचार्य कली में हुए और मध्वाचार्य से ही शाखा में हम लोग होते हुए चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद में अभी तक एक ही धारा यही प्रधान धारा है। इसी को ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व जी को उनको और उनसे संबंध भगवान से क्या रखा, भक्ति तो है, भक्ति भगवान जी के साथ में क्या संबंध, इसी संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ भावना भावना यह है साधारण रूप में तो वो प्रभु है कृष्ण और हम उनके दास हैं, किंतु दास भी पांच प्रकार के होते हैं, काल दास तत्कर वास्तव्य और एक एक संप्रदाय में एक एक भावना प्रधान है। ये चारों ही जो वैष्णव संप्रदाय है चारों ही भक्ति के पोषण करने वाले चारों में से कई एक होगा। साधारण से तो दास ही भाव है किंतु हम लोगों के इस ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षा के अनुसार में गोस्वामियों के शिक्षा के अनुसार में कृष्ण के प्रति ब्रज का जो प्रेम है और ब्रज प्रेम में भी गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही सबसे श्रेष्ठ प्रेम है, यही संबंध भगवान के साथ में हम लोगों का। दूसरा हुआ लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी नारायण के प्रति जैसे सेवा की भावना रखती है अपने को दासी और प्रभु को अपना इस चीज में सेवा करती है, ये दास भाव है। रामानुज संप्रदाय में कली काल में उन्हीं के संप्रदाय में राम और अनुजा था तो लक्ष्मण जी रामानुज के रूप में अंशिक रूप में आकर थे और इसकी शिक्षा दी कि भगवान की सेवा ऐसे करती। इस प्रकार से दक्षिण प्रदेश में इधर में वृंदावन में रंगनाथ का मंदिर इत्यादि इसी कर सकते तो ये सिख संप्रदाय या सिख संप्रदाय के अंतर्गत रामानुज संप्रदाय उसी के अंदर में एक शाखा है रामानंदी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन रामानंदी जी हो गए उन्हीं के संप्रदाय में तुलसीदास इत्यादि हुए और उसमें रामचंद्र जी की उपासना सीता जी की उपासना करते हैं। ये एक संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय हुआ रुद्र, श्री ब्रह्म रुद्र, रुद्र माने शंकर, शंकर जी के बहुत विविध रूप हैं। शंकर जी असल में सदाशिव हैं, सदाशिव उनका नित्य रूप, किंतु जगत की जगत को के कल्याण के लिए जगत का ध्वंस करने के लिए तमोगुण को आश्रय लेकर और यह कार्य कभी कभी कुछ और भी भगवान की विशेष सेवा करते हैं, ऐसी कोई सेवा नहीं है भगवान की जो नहीं करते। ये शंकर जी ही हनुमान जी हैं, ये शंकर जी ही शक्कर से गरुड़ जी हैं, ये शंकर जी ही गोपेश्वर महाराज, ये शंकर जी ही एक रूप में श्री जी। इस तरह से जब जब आवश्यकता होती है तैसे तैसा रूप धारण करके भगवान की विविध लीलाओं में विविध प्रकार से रुचि करें। इसलिए वैष्णव आनंद यथासंभोग, भक्तों में वैष्णव में यथासंभोग उनको संभव है, इसलिए सभी इंसान वो भगवान की जैसे सेवा करते हैं उस सेवा को रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। उसी में कलिकाल में विष्णु स्वामी उत्पन्न। लोग कहते हैं गुरु जी ने कहीं लिखा है कि ये विष्णु संप्रदाय में 700 सन्यासी थे त्रिदंडी, और उसके अंतिम जो थे वो बिंदु मंगल। उस बिंदु मंगल में 700 वर्ष तक वृंदावन में कालीगा में आराधना की भगवान की। बिंदु मंगल जी कैसे दक्षिण से आए कृष्ण बिन्ना नदी से होते होते रहते, कैसे आप पूरी कैसे ही आराधना 700 वर्षों के बाद में किसी योग व्यक्ति की कलाश में थे जिसको हम नहीं ये सब कुछ दे जाए। तो बल्लभाचार्य जी उसी समय में आए, तो बल्लभाचार्य जी को अपनी उपासना का भावना तो उसमें पूरी नहीं दी, किंतु बादशल लड़क तक उनके अंदर में इसलिए बादशल लड़क पीछे थे उस संप्रदाय में। इसी को कहते हैं कुश्ती मार्ग। इसी संप्रदाय में पीछे थे उनके पुत्र दो हुए, गोपीनाथ और
बल्लभ
विठल। वो बल्लभ